नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आकाशवाणी गोल के कार्यक्रम परिक्रमा में। प्रोग्राम के इस अंक में आप जुड़ चुके हैं सरफिरोजी के साथ। उम्मीद है आपका दिन बेहद अच्छा गुजर रहा होगा और आप दिन के इस वक्त तक देश विदेश में हो रही घटनाओं से अवगत होंगे, लेकिन अगर कोई जानकारी अभी तक बाकी रह गई है तो वो मैं और मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा आपको आज देने वाले हैं। रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हमारे संवाददाता आपको देंगे देश की हलचल, आर्थिक जगत और खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो सायरा, प्रोग्राम को शुरू किया जाए।
यस एब्सोल्युटली, नमस्कार राधा, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, एज ऑलवेज वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डेटलाइन सेगमेंट इन विच वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कुछ ही देर में आपको पता चलेगा। एंड जाहिर सी बात है, जब नाम है शो का परिक्रमा, तो हम लोग देश की परिक्रमा पे भी निकलेंगे, जाएंगे मुख्तलिफ हिस्सों में टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर। ऑल ऑफ दिस ओवर रफली हाफ एन आवर। लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सैनिक क्षेत्र में आतंकवाद का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध।
Center asked states and union territories not to designate police stations as places for examination of witnesses.
Videsh Mantri S. Jaishankar 2 din ki adhikarik yatra par Mauritius pahunche.
India successfully delivered physical and digital infrastructure at scale on way to achieving sustainable development goals, says Niti Aayog Vice Chair in UN.
और टेनिस में सुमित नागल का पुरुष सिंगल्स के 32वें राउंड में एलियास यामेर से मुकाबला आज होगा।
And now it's time for Dateline India, and as I said at the beginning of the show that we have a very interesting topic. And Sir Firozi, सबसे पहले जब हम लोग अपने देश का तस्वीर करते हैं, when we talk about our country, what is the one thing that strikes the most?
कि हमारा देश जो है वो कितनी चीजों से मिलकर बना है।
yes.
इसमें कितनी अलग अलग संस्कृतियां हैं, परंपरा हैं।
यस, दैट इज इट्स डाइवर्सिटी दैट मेक्स आर कंट्री यूनिक एंड दैट इज द यूएसपी ऑफ इंडिया, इट्स डाइवर्सिटी। और जाहिर सी बात है, जब डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स ट्रेडिशंस होंगे तो जाहिर सी बात है ट्रेडिशंस के साथ अलग अलग कल्चर्स के साथ उनके फेस्टिवल्स भी आएंगे,
उनके जश्न भी होंगे।
एब्सोल्युटली। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया, अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। It is known as the land of festivals due to the country's rich cultural heritage and diverse religious traditions. And being a highly spiritual country, festivals are a very, very important part of people's lives in India. Festivals which are celebrated throughout India are called national festivals, and the whole of India comes together to celebrate them. Diwali is the festival of Hindus, but you won't find a single Muslim or a Christian child who stays at home when all his friends and neighbors are bursting crackers at the local park, isn't it? So, अगर जाहिर सी बात है ईद आएगी तो कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे ईदी ना मांगे। तो वो ये बच्चे हों चाहे बड़े हों, वी डोंट लुक अबाउट इट कि किसका फेस्टिवल है। एवरी हाउस विल सेलिब्रेट क्रिसमस इज वेल।
खासतौर पर जो मुस्लिम दोस्तों से डिमांड की जाती है शीर कोरमा की।
यस एब्सोल्युटली, चाहे शीर कोरमा हो, चाहे सिवैयां हो, या फिर होली की गुजिया, दैट इवन आई लव देम। सो आई एम श्योर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेस्टिवल्स, फूड बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स। एंड वेल, डू यू थिंक दैट ऑन क्रिसमस ईव व्हेन ऑल चर्चेस एंड रेस्टोरेंट्स आर ड्रेस्ड अप फॉर अ वेरी लॉन्ग पार्टी, द पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द कम्युनिटीज स्टे बैक एट होम? नो, दे डोंट। They are out there partying as hard as they can, if not harder than the Christian friends. Well, that is where the strength of India lies, that is in its universe, in its diversity lies its unity.
जी बिल्कुल। और सायरा, वैसे तो भारत में साल के हर महीने में अगर हम देखें तो एक त्यौहार तो आ ही जाता है। जैसे कि कल जो मुस्लिम समुदाय है वो मोहर्रम का त्यौहार मनाने वाला है। ये त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के गम में मनाया जाता है। और अगर शुरुआत करें साल के पहले, बात करें साल के पहले की, पहले महीने की, तो जनवरी के महीने में संक्रांति या मकर संक्रांति का त्यौहार आता है। और त्यौहार एक ही है लेकिन इसे देश के मुख्तलिफ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर दक्षिण भारत में हम चले जाएं तो इसी त्यौहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्यों में इसे लोहड़ी के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। और इसके पीछे की मान्यता यह है कि इस दिन सूर्य भगवान जो है वो अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं और इसी के बाद संक्रांति के त्यौहार के बाद एशिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भी आयोजित होता है और ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में इकट्ठा होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। इनमें से हर जगह पर हर 12वें साल और प्रयाग में दो कुंभ पर्वों के बीच 6 साल के अंतर पर अर्धकुंभ भी होता है और इसी तरह का एक मेले जैसा त्यौहार ही तमिलनाडु में भी मनाया जाता है जिसे थाई पूसम कहा जाता है।
Yes, absolutely. And well, if you talk about it, there are some you can see festivals that are related to harvest that are celebrated across the country. There are some festivals related to nature, like monsoons are going on or Sawan almost keh sakte hain labon pe hai. That's about to start and barishe to obviously ho hi rahi hain. To Sawan ke mahine mein bhi teej aayegi, haryali teej aayegi. To Sawan ke jhule padenge, log chudiyan pehnenge. So all these festivals are so much an inherent part and. And well, tomorrow, as you say, is Muharram. Although it's not celebrated as a festival, it's not called a festival. It's a mourning incident because it's a very somber thing that we remember the martyrdom of Imam Hussein. Nonetheless, there are so many other festivals that are celebrated with very, very fervor and you can say poignancy, isn't it? And there are several reasons why India has such a vast and vibrant festival calendar. And first, of course, is its religious diversity. India is home to various religions, including Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, among others. Each religion has its own set of festivals and celebrations that are deeply rooted in the respective faiths and traditions. There are also seasonal celebrations, as I mentioned, that they are closely tied to the agricultural cycle and changing seasons. For instance, as you mentioned, Pongal in Tamil Nadu, Bihu in Assam, Lohri in Punjab, they are all harvest festivals. And historical and mythological significance is also there. Several festivals in India, they commemorate important historical events or are based on mythological stories and legends. For example, Diwali celebrates the return of Lord Ram from his exile, while Holi marks the triumph of good over evil. So that was a lot of talk about our festivals and now it's time to go to different parts of the country.
जी बिल्कुल। और सायरा, जैसा कि हमने अभी बात की कि हमारे जो त्यौहार हैं वो अलग अलग महत्वपूर्ण चीजों को दर्शाते हैं, जैसे कि अभी उत्तराखंड में आज प्रकृति संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला मनाया जा रहा है। ये त्यौहार जो है उत्तराखंड में हर वर्ष बड़े पैमाने पर इस त्यौहार पर वृक्षारोपण किया जाता है। ये त्यौहार फसलों की अच्छी फसलों की कामना करता है और उसके साथ ही इस दिन बीजों के संरक्षण किए जाते हैं। हरेला के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी राज्य संवाददाता साक्षी सिंह के पास।
प्रदेश में आज से लोक पर्व हरेला शुरू हो गया है। हरेला की शुरुआत के पहले दिन आज राज्य भर में 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आज व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है और सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, कॉलेजों सहित विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण जारी है। देहरादून में हरेला के अवसर पर शहीदों के नाम पौधारोपण सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला पर्व प्रकृति के संरक्षण और पूजन का एक महापर्व है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ में शहीद हुए राज्य के 5 जवानों की याद में सभी लोगों से 5 पौधे रोपित करने का आह्वान भी किया।
हमने तय किया है 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे पेड़ और वृक्षों को रोपित करेंगे। आज पर्व के दिन 50 लाख पौधे पूरे प्रदेश के अंदर आज रोपित किए जाएंगे और साथ ही आज हमने इस हरेला पर्व की शुरुआत हमारे देवभूमि उत्तराखंड के 5 वीर जो वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए उनके स्मरण में आज 5 पौधों को रोपित किया गया और मैं सभी से अपील करता हूं पूरे राज्य के अंदर कि अपने आसपास 5 पौधे जरूर उन 5 हमारे वीर शहीदों के नाम रोपित करें।
हरेला धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण के साथ सुख समृद्धि का पर्व है। ये लोक पर्व सावन के आने का संदेश है जिसके पीछे फसल लहराने की कामना और बीजों का संरक्षण है। हरेला का अर्थ हरियाली से है। उत्तराखंड कृषि पर निर्भर रहा है और ये लोक पर्व इसी पर आधारित है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
एंड नाउ फ्रॉम उत्तराखंड वी हेड टुवर्ड्स बिहार।
जी सायरा, बिहार में चल रहे वन महोत्सव में पंचायती राज विभाग ने भी शामिल होने का निर्णय किया है। इसके तहत विभाग ने प्रत्येक वार्ड में पंचायत वन महोत्सव मनाने का फैसला किया है। वन महोत्सव के तहत आने वाले दिनों में प्रत्येक वार्ड में 5-5 पौधे लगाए जाएंगे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
बिहार में मॉनसून में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अलावा सरकार के कई अन्य विभाग भी पौधारोपण कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंचायती राज विभाग ने पंचायत वन महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में बरगद, आम, महुआ, नीम और पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। राज्य में पंचायती संस्थाओं के अंतर्गत 1,00,000 वार्ड हैं। इसके तहत कुल 5,50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कल इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक यह अभियान जारी रहेगा। इधर पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रेम कुमार ने कल गया जिले में आयोजित कार्यक्रम में सूखे पहाड़ों में वन आच्छादन बढ़ाने के लिए सीड बॉल तकनीक से पौधारोपण की शुरुआत की। इसके तहत पूरे बारिश के मौसम के दौरान मिट्टी और खाद में लपेटकर प्रमुख प्रजाति के पौधों के बीजों को सूखे पहाड़ों पर गिराया जाएगा। इसके अलावा वन महोत्सव के दौरान वन विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान को भी बढ़ावा देने का निर्णय किया है, जिसे लेकर राज्य में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। परिक्रमा के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार राय।
And from the eastern side of the country, we head towards the west here, towards Maharashtra. Ashrani Wari is an annual pilgrimage that is performed by Varkaris who worship Lord Vitthal, who is also regarded as a form of Lord Vishnu. These include peasants, labourers and farmers, along with men and women of all ages who can be seen carrying holy basil plants on their heads while undertaking the Wari. There is also another century-old tradition of carrying the paduka or footwear of the sons in a palki to Pandharpur. We have very more interesting details from our correspondent Nisha. Let's go over to her.
In Maharashtra, Ashadi Wari is an annual pilgrimage performed by Varkaris who worship Vitthal, regarded as a form of Lord Vishnu. These include peasants, laborers and farmers, along with men and women of all age groups who can be seen carrying holy basil plants on their head while undertaking the Wari. There is also another centuries-old tradition of carrying the paduka or footwear of saints in a palki to Pandharpur. While Sant Gyaneshwar's palki departs from Alandi, Sant Tukaram's palki starts its journey from Dehu. Events such as Ringan and Dhava are also held during the pilgrimage. During the Ringan, an unmounted sacred horse runs through the rows of pilgrims who try catching the dust particles kicked off and smear their head with the same. Dhava is another kind of race where everyone wins, and it is held to commemorate the manner in which Sant Tukaram first saw the temple of Pandharpur and started running in sheer exhilaration. In order to ensure that lakhs and lakhs of pilgrims who gather at Pandharpur on Ashadi Ekadashi do not face any difficulty, the Maharashtra government too undertakes several initiatives. Besides toll waiver for vehicles going to Pandharpur for Ekadashi and setting up health camps, accommodation and distributing free drinking water, the state government this year has announced setting up a corporation called Mukhyamantri Varkari Mahamandal. This corporation will work towards the development of pilgrimage sites, provide medical assistance, food, security and insurance to Varkaris and Kirtankars. It will also focus on improving roads from where the palki processions are taken out. The corporation will also work towards making the Chandrabhanga, Indrayani and Godavari rivers free from pollution. Nisha Rani for Parikrama from Mumbai.
सायरा, हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो ये अपने टूरिस्ट प्लेसेस के साथ साथ एक और चीज के लिए भी बहुत फेमस है। आप बता सकती हैं किस चीज के लिए?
वेल एब्सोल्युटली, हाउ कैन वी फॉरगेट द एप्पल्स फ्रॉम हिमाचल।
बिल्कुल बिल्कुल, और हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन शुरू हो गया है। यहां सेब से जनरेट होने वाला रेवेन्यू 5,500 करोड़ के करीब है। और सायरा, जब सेब जो है हिमाचल प्रदेश में उगने से लेकर आप और हम तक पहुंचने के रास्ते में बहुत से लोगों को कई तरह से रोजगार देता है।
हिमाचल प्रदेश के बागवानी विभाग के अनुसार इस बार प्रदेश में 2,91,42,800 सेब की पेटी होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल से 80 लाख पेटी अधिक है। राज्य सरकार ने इस बार केवल यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब बेचने का निर्णय लिया है, जबकि टेलीस्कोपिक या अन्य कार्टन के इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसके अलावा यूनिवर्सल कार्टन पर बीते साल की तुलना में इस वर्ष 6% कम GST लगेगा। सेब सीजन को देखते हुए शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप व पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने फागू सेब नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त के अनुसार शिमला जिले के फागू व बलग में स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष में सेब सीजन के दौरान बागवानी, राजस्व व पुलिस विभाग के कर्मचारी दिन रात तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि सेब नियंत्रण कक्ष में मंडियों तक सेब ले जा रहे GPS लगे वाहनों का पंजीकरण होगा और वाहन का पूरा विवरण हिम सेब ऐप पर डाला जाएगा, जिसके बाद वाहन अपने गंतव्य स्थल की ओर निकलेंगे। पुलिस अधीक्षक ने सेब नियंत्रण कक्ष के बाहर बेहतर बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि यातायात पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल RML और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के साझा प्रयास से एक प्लास्टिक सर्जरी मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में 17 डॉक्टरों की टीम ने लगातार 24 घंटे तक प्लास्टिक सर्जरी के ऑपरेशन किए और इस दौरान 2 वर्ष से लेकर 58 वर्ष आयु तक के 24 मरीजों के सफल ऑपरेशन किए गए। RML अस्पताल के निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शुक्ला ने बताया कि यह प्लास्टिक मैराथन अपने आप में एक अनूठी कोशिश थी, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक सर्जरी और इससे जुड़ी भ्रांतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना था।
विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस पे हमारे हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी की और एनेस्थीसिया की डेडिकेटेड टीम ने मिलके एक बहुत ही यूनिक सर्जरी का मैराथन किया है, जिसमें कि एंटायर 24 घंटे में 24 मरीजों का ऑपरेशन हुआ है। और हमारे यहाँ एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक भी चालू की गई थी, जिसमें जितने ट्रांसजेंडर पेशेंट्स की मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, उसको एक मल्टी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स के थ्रू उनको ठीक किया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी का मैराथन का मोटिव था लोगों में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अवेयरनेस दिलाना, और प्लस प्लास्टिक सर्जरी से जो रिलेटेड लोगों के माइंड में मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं, उनको आप लोगों के माध्यम से कैसे दूर किया जाए।
Yes, it's very important to do away with these myths related to plastic surgery. And Sir Firozi, lekin ek aur cheez hai that although it's a very in thing to do, you know, to go for plastic surgery, mm-hmm. that's a very successful field as well. Lekin bahut se you can say unqualified doctors bhi private practice mm-hmm. kar rahe hain aur logon ko jo hai keh sakte hain usse zyada nuksan zyada ho raha hai aur faida kam, isn't it?
Ji bilkul, Atal Bihari Vajpayee Ayurvigyan Sansthan mein burn aur plastic surgery vibhag के प्रोफेसर डॉक्टर समीक भट्टाचार्य ने कहा कि काफी अयोग्य डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सही प्लास्टिक सर्जन, योग्य प्लास्टिक सर्जन से अपनी सर्जरी करवाएं।
प्लास्टिक सर्जरी के लिए भ्रांति इसलिए लोगों में है क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी कोई एरिया स्पेसिफिक स्पेशलिटी नहीं है, जैसे न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी एक पर्टिकुलर एरिया का है। मरीज को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ हमें भी दिमाग का चोट है तो न्यूरोसर्जन के पास जाना। प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ा एक एरिया को कवर करता है और ये एक सोच पे बेस्ड है कि कहीं भी कोई विकृति है या कोई डिफेक्ट है उसका कवर करना या उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना हमारा काम। तो इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे एरियाज है जो दूसरे स्पेशलिटी से भी ओवरलैप कर जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि प्लास्टिक बिकॉज ऑफ द मूवीज में दिखाया गया कि शक्ल बदल दिया, पूरा कोई स्कार नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक सर्जरी भी एक नॉर्मल ऑपरेशन की तरह ही होता है, उसमें टांके भी लगते हैं, मगर हम लोग जैसे टांके लगाते हैं उसमें दाग बहुत कम आते हैं, बिकॉज हमें पता है कि टिश्यूज को कैसे हैंडल करना है और रिपेयर करना है।
एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आजादी का सफर।
द हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट पास ऑन द 16th of July 1856 legalized the remarriage of widows in all jurisdictions of India under British rule. Drafted by Lord Dalhousie and passed by Lord Canning, it was the first major social reform legislation after the abolition of sati in 1829 by Lord William Bentinck.
Polygyny and child marriage were common practices in Bengal in the early decades of the 19th century. Girls were typically married off at a very early age and often to much older men. Consequently, young widows came to constitute a large proportion of the population. These widows were typically condemned to a life of harsh austerity. A number of social reformers tried to address these issues.
The Widow Remarriage Association, which was created in 1856, was started by Vishnu Shastri Pandit. Karsandas Mulji, a prominent figure in this field, started the Satya Prakash in Gujarati in 1852 to promote the remarriage of widows. Ishwar Chandra Vidyasagar was one of the most prominent campaigners, and he petitioned the Legislative Council. On the 4th of October 1855, Vidyasagar sent a petition signed by 987 individuals to the government and subsequently organized an extensive campaign. Vidyasagar used Vedic literature to demonstrate that the Hindu faith permitted widow remarriage.
The Act validated and regulated Hindu widow marriages. It recognized a remarried widow's rights and inheritance as if she had married for the first time. The Act also legally protected males who married a widow. The first marriage took place in North Calcutta on the 7th of December 1856 when the Hindu Widow Remarriage Act was passed. The groom was Ishwar Chandra Vidyasagar's close friend's son.
We also remember freedom fighter Uma Dutt, who was martyred on the 16th of July 1939. A resident of District Shimla, Himachal Pradesh, Uma Dutt took part in agitation against the ruler of Dhami state, demanding the establishment of a responsible government and the removal of hardship of the state's people. On the 16th of July 1939, when the people were demonstrating with the national flag, suddenly the state police snatched it away and set it ablaze. This act caused a mass fury and resulted in the police firing on unarmed agitators. Uma Dutt was killed in the firing on the 16th of July 1939.
We also remember independence activist Seetal Singh, who took part in the First War of Independence in 1857. Singh was serving the English East India Company Army in Sindh, now in Pakistan, but left it during the uprising and participated in attacking and ransacking British establishments. He also offered financial help to his fellow activists and encouraged them to go all out to overthrow the oppressive foreign rule.
Seetal Singh was captured in the course of a confrontation with the Company Army in the Sindh area and charged with desertion and mutiny against the British authorities. He was sentenced to transportation for life on the 18th of June 1857 and sent from Bombay to the Andaman Islands in April 1858, where he died in detention on the 16th of July 1858.
Time for business news now. Indian equity benchmark indices, Sensex and Nifty, traded tight range and ended in green today. The BSE Sensex inched up 52 points to close at 80,717, while NSE Nifty was up by 26 points to close at 24,613. In the global crude market, Brent crude is trading at $84.11 per barrel, while WTI crude is trading at $81.12 per barrel when reports last came in. In the global commodity exchange, for 5th August 2024 contract, gold is trading at 73,750 rupees per 10 grams, while silver for 5th September 2024 contract is trading at 93,011 rupees per kg when reports last came in.
और सायरा, खेल के मैदान में आज क्या हलचल है?
वेल, एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड आवर लिसनर्स अबाउट द स्वीडिश ओपन, वेल, इंडिया स्मिथ नागल टेक्स ऑन फेवरेट एलिया स्मिया इन द राउंड ऑफ 32 ऑफ मेन सिंगल्स इन स्वीडन टुडे. इन द मेन्स डबल्स, द पेयर ऑफ स्मिथ नागल एंड पोलैंड्स कैरोल द्रेविचकी विल फेस फ्रांसिस अलेक्सेंडर म्यूलर एंड लुका वोएश दिस इवनिंग. Nagal is looking forward to gain confidence ahead of the Paris Olympics.
और श्रोताओं, अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा ली. सायरा, बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में देश को आजादी दिलाने के लिए अपना योगदान दिया. पुरुषों के साथ साथ कई महिलाएं भी इसमें आगे रहीं और इन्हीं में से एक अरुणा आसिफ अली भी हैं, जिनकी आज जयंती है. ये इन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली क्रांतिकारी जुझारू नेता श्रीमती अरुणा आसिफ अली का नाम इतिहास में दर्ज है. इन्होंने सन 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हें 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार, 1991 में जवाहर नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और 1992 में पद्म विभूषण और इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 1997 में इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया.
Today we are also remembering D.K. Pattambal, who along with M.S. Subbalakshmi and M.L. Basant Kumari is popularly referred to as the female trinity of Carnatic music. This trio initiated the entry of women into mainstream Carnatic music. Pattambal has been appreciated all over the world by Carnatic music lovers, and along with devotional songs, she has also sung film songs in Tamil. And also she was born in a Brahmin family. She was called Patta as a child prodigy. Her father, who was a D.K. Dikshitar, was deeply interested in music and he inspired her to learn Carnatic music. She did not receive any formal training as such in a systematic manner, beginning with the basics. She also did not receive any regular Gurukul training in accordance with those times. Especially women from conservative families were constrained from attending Gurukul training. She received a tuition from an unnamed Telugu-speaking musician whom she called Telugu Vadiyar or Telugu teacher, who also taught her Telugu and Sanskrit. So we are remembering Pattambal today. Let's listen to one of her numbers.
எப்படி பாடினரோ எப்படி பாடினரோ அடியார் எப்படி பாடினரோ அடியார் எப்படி பாடினரோ அடியார்.
और आज पुण्यतिथि है भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन कलाकार सुरेखा सीकरी की. वर्ष 2018 में आई बॉलीवुड फिल्म बधाई हो और धारावाहिक टेलीविजन शो बालिका वधू के लिए इन्हें काफी सराहा गया. इन्होंने रंगमंच में वर्ष 1978 से 2021 तक काम किया. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1978 में राजनीतिक ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी का से की थी.
यस, एंड वी कैन नॉट फॉरगेट अनफॉरगेटेबल रोल एज द इरिटेटेड एंड कंसर्न्ड नानी ऑफ जुबैदा फिल्म एज वेल. मतलब जुबैदा की मदर वो बनी थी, तो रियाज की नानी बनी थी, सो वी कैन नॉट फॉरगेट दैट रोल एज वेल. एंड शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ उर्दू पोएट्री एंड शी हैज रिसाइटेड वन ऑफ द वेरी फेमस गजल्स ऑफ फेज. लेट्स लिसन टू दैट.
मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है. तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए. और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा. अनगिनत सदियों के तारीख बही माना तलसुम, रेशमों अतलसों कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए.
और आज ही जन्मदिवस है जगदीश चंद्र माथुर का। जगदीश चंद्र माथुर 1955 से लेकर 1960 तक ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल रहे। इन्होंने ही AIR का नाम बदलकर आकाशवाणी किया। और अब श्रोताओं सायरा और सर फिरोजी को दीजिए इजाजत कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने का।
Yes, it's time to call it a wrap. So stay tuned for coming up next is our Hindi News Bulletin. तब तक के लिए सरफरोजी और सायरा को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।